आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी किया मसौदा मतदाता सूची। करीब 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम हुए बाहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सेमीकंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन देगी सरकार। राज्य में पारिवारिक संपत्ति का हस्तांतरण होगा आसान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के लिए शुरू की मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता। टोल फ्री नंबर पर 24 घंटे सहायता प्राप्त कर सकते हैं विद्यार्थी। और प्रदेश में घने कोहरे तथा भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित। हवाई और रेल यातायात पर भी पड़ रहा है असर। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद प्रदेश की मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेड़वा ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची में 12,55,56,025 मतदाताओं के नाम हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा मतदाता सूची के 81.3% मतदाताओं ने नई मसौदा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया है। नई मसौदा मतदाता सूची से कुल 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम बाहर हो गए हैं। मृत मतदाताओं की संख्या 46,00,000 से अधिक है। एक रिपोर्ट।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि दावा और आपत्ति की अवधि 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक है। नोटिस चरण और दावों और आपत्तियों का निस्तारण 27 फरवरी 2026 तक होगा और अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए BLO, ECI नेट, मोबाइल ऐप, CEO uttarpradesh.nic.in या voters.eci.gov.in का उपयोग किया जा सकता है। नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6, विदेशों में रहने वालों के लिए फॉर्म 6 का, नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और सुधार या स्थान बदलने के लिए फॉर्म 8 का उपयोग किया जाएगा। ये फॉर्म BLO तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र यानी VRC, CEO uttarpradesh.nic.in से प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं या ECI नेट मोबाइल ऐप voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, उच्च शिक्षा और परिवहन सहित कई विभागों के 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमावली 2025 को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लाई गई सेमीकंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 3,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवेश पर विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पीलीभीत में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन दिए जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ।
जनपद पीलीभीत में कनकपुर रोड के ऊपर एक नया बस अड्डा मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर बनना है। जनपद पीलीभीत में नवीन बस स्टेशन स्थापित निर्माण करने के लिए इसमें राजस्व विभाग की जमीन 7,000 स्क्वायर मीटर, ये जमीन सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को लीज पर दी है। तो उत्तराखंड और खासतौर से नेपाल को जाने आने में सुविधा होगी और खासतौर से इसमें पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने चिकित्सा अनुभाग वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय के 11 भवनों का ध्वस्तीकरण करते हुए 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाने को भी मंजूरी दी। बैठक में राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल संपत्ति के दान विलेख पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में दी जा रही छूट के दायरे को और व्यापक करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत GRAM अधिनियम 2025 देश के ग्रामीण विकास परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा और यह विकसित भारत की नींव रखेगा। एक रिपोर्ट।
लखनऊ के लोक भवन में वर्ष की पहली मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसे पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने, गारंटी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण करने के लिए पारित किया गया है। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। पिछली मनरेगा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नया अधिनियम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में कई खामियां थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, नए अधिनियम में रोजगार सृजन और समय पर भुगतान की संभावनाएं हैं। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ मैं मुकेश कुमार बल।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे। इस दौरान वह विकास परियोजनाओं की प्रगति जांचने के साथ ही विविध कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचकर निर्माणाधीन गोरखपुर पिपराइच फोर लेन मार्ग का निरीक्षण करेंगे। करीब 20 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को फोर लेन बनाने पर 942 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगस्त 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री शहर के राप्ती नगर और मोहरीपुर में स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण करने के साथ ही वहाँ जरूरतमंदों में कम्बल वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री इससे पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े रहे दिवंगत समाजसेवी परमेश्वर प्रसाद के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। समाचार कक्ष से अरुण।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परीक्षा संबंधित तनाव से निपटने के लिए विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता शुरू की है। CBSE की परीक्षाएं इस वर्ष 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। एक रिपोर्ट।
कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क परामर्श इस वर्ष 1 जून तक जारी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा संबंधी तनाव को कम करना है। विद्यार्थी टोल फ्री नंबर 1800118004 पर हिंदी और अंग्रेजी में 24 घंटे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा तनाव मुक्त तैयारी, प्रभावी समय और तनाव प्रबंधन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह।
सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। इस विशेष श्रृंखला में आज मिशन अमृत सरोवर पर नजर डालते हैं।
प्रगति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मिशन अमृत सरोवर की नियमित समीक्षा की गई। इस डिजिटल मंच पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ जुड़े ताकि जमीन की उपलब्धता, विभागों के बीच समन्वय और फंड जारी करने जैसी समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। इस योजना के तहत 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रगति की निगरानी के बाद काम में तेजी आई और अब तक देश भर में 68,800 से अधिक अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। इन जलाशयों के पास 23 लाख से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश में घने कोहरे और भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित है। कोहरे के चलते हवाई और रेल यातायात पर असर पड़ा है। कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार कम दृश्यता के कारण रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी रेलगाड़ियों की स्थिति की जानकारी लेने का परामर्श दिया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर घना से लेकर अत्यंत घना कोहरा पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल से 12 जनवरी तक प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा पड़ने की चेतावनी दी है। इस अवधि में मौसम शुष्क रहेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी किया मसौदा मतदाता सूची। करीब 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम हुए बाहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सेमीकंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन देगी सरकार। राज्य में पारिवारिक संपत्ति का हस्तांतरण होगा आसान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के लिए शुरू की मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता। टोल फ्री नंबर पर 24 घंटे सहायता प्राप्त कर सकते हैं विद्यार्थी। और प्रदेश में घने कोहरे तथा भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित। हवाई और रेल यातायात पर भी पड़ रहा है असर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।